पिंकेश कुमार की आवाज में, बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस, पेपर थर्ड तुलनात्मक राजनीति, अध्याय राजनीतिक दल दलीय व्यवस्था तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत ब्रिटेन में राजनीतिक दलों का अध्ययन। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की भूमिका। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंग्लैंड। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों का इतिहास। प्रजातंत्र की जन्मभूमि होने के कारण ब्रिटेन स्वभावतः राजनीतिक दलों की भी जन्मभूमि रहा है। यूं तो ब्रिटेन में राजनीतिक गुटबंदियां पहले से रही हैं, जैसे 15वीं शताब्दी में लंगास्टियन और यार्किस्ट तथा 17वीं शताब्दी में कैवेलियर और राउंडहेड, परंतु इन्हें सही अर्थों में राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। विशुद्ध राजनीतिक दलों का उदय प्रजातंत्रीय पद्धति के साथ ही संभव था और इसलिए 1688 की क्रांति के बाद ही दो विशुद्ध राजनीतिक दलों की नींव पड़ी, जिन्हें व्हिग और टोरी का नाम दिया गया। 1688 के बाद लगभग 150 वर्षों तक ये दोनों दल बारी बारी से शासन संचालन करते रहे। 1832 का सुधार अधिनियम पारित किए जाने के बाद व्हिग दलों ने क्रमशः उदार और अनुदार दल के नाम ग्रहण कर लिए। 1830 के बाद कुछ विराम कालों को छोड़कर 1874 तक उदार दल पदारूढ़ रहा और उसके बाद कुछ संक्षिप्त अवकाशों को छोड़कर 1905 तक अनुदार दल के हाथ में सत्ता रही। इसके बाद 1915 तक पुनः सत्तारूढ़ पार्टी उदार दल रही और युद्धकाल में सभी दलों की संयुक्त सरकार रही। समय समय पर अन्य समूह भी बने, क्यों किंतु वह चिरस्थायी न हो सके। उदार और अनुदार दलों में विस्तार की बातों और कुछ सामयिक प्रश्नों को लेकर मतभेद रहा करता था, परंतु देश की आर्थिक और राजनीतिक ढांचे पर दोनों में मतैक्य था। दोनों दल व्यक्तिगत संपत्ति, पूंजीवादी व्यवस्था और संविधान की मूल बातों पर सहमत थे और दोनों का नेतृत्व उच्च वर्गीय लोगों के हाथों में था। मजदूर दल का उदय, राइज ऑफ द लेबर पार्टी। 20वीं सदी के प्रारंभ में एक नवीन विचारधारा और दृष्टिकोण के साथ एक नए दल का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे कहा जाता था मजदूर दल। 1900 में मजदूर प्रतिनिधित्व समिति नामक एक नया संगठन बना और 1906 के चुनाव में इसे लोक सदन में 24 स्थान मिले। इसके बाद इसने मजदूर दल का नाम ग्रहण किया। इस समय से लेकर प्रथम महायुद्ध के काल तक लोक सदन में मजदूर दलों के सदस्य की संख्या 40-50 रहा करती थी और यह दल उदार दल के सहयोग से कार्य करता था। इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिक वर्ग की सुविधा हेतु कानूनों का निर्माण होता था। प्रथम महायुद्ध ने वास्तु स्थिति में बहुत परिवर्तन कर दिया। युद्ध के कारण उत्पन्न असंतोष, मताधिकार के विस्तार और सिडनी बैब तथा मैकडोनाल्ड जैसे नेताओं के प्रयत्नों से मजदूर दल की शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई और 1924 में इसे अपना प्रथम मंत्रिमंडल बनाने का अवसर मिला। 1920 से 35 के काल में ब्रिटेन में तीन राजनीतिक शक्तियां, उदार दल, अनुदार दल और मजदूर दल देखी गई, लेकिन मजदूर दल की शक्ति के बढ़ने के साथ साथ उदार दल का प्रारंभ हो गया और ब्रिटिश राजनीति में फिर से दो दल, मजदूर दल और अनुदार दल प्रमुख शक्तियां रह गई। 1945 से 51 के काल में ब्रिटेन में मजदूर दल की सरकार बनी, लेकिन 1951 से 64 तक अनुदार दल का प्रभुत्व रहा। 64 के चुनाव में मजदूर दल को थोड़ा बहुमत प्राप्त हुआ। 66 के चुनाव में मजदूर दल ने बहुमत में वृद्धि कर सुदृढ़ सरकार की स्थापना की, लेकिन 70 के चुनाव में मजदूर दल के स्थान पर अनुदार दल के नेता एडवर्ड हिथ आसीन हुए और विपक्षी मजदूर के नेता हुए हैरोल्ड विल्सन। फरवरी 1974 और अक्टूबर 1974 के चुनाव में स्थिति बदली और मजदूर दल के द्वारा सरकार का निर्माण हुआ। 1979 के चुनाव में स्थिति पुनः बदली और श्रीमती मार्गरेट थैचर के नेतृत्व में अनुदार दल की सरकार का निर्माण हुआ। जून 1983 के आम चुनाव के परिणाम स्वरूप अनुदार दल को लोक सदन में भारी बहुमत की स्थिति प्राप्त हुई। जून 1987 के चुनाव में प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर की कंजर्वेटिव पार्टी को हाउस ऑफ कॉमन्स में भारी बहुमत मिला। 650 सदस्य वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी को 376 स्थान प्राप्त हुए। 9 अप्रैल 1952 को हुए चुनाव में ब्रिटिश मतदाताओं ने एक बार पुनः अनुदार दलों के हाथों में देश की बागडोर सौंपी। अनुदार दल को 336 सीट प्राप्त हुए। 1997 के चुनाव में लेबर पार्टी की सरकार बनी टोनी ब्लेयर के नेतृत्व में और वर्तमान में नवंबर 2007 में ब्रिटेन में लेबर गॉर्डन ब्राउन के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार कार्यरत है। ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की विशेषताएं। लोकतंत्र ब्रिटेन में वास्तव में देश की दलिया पद्धति की क्रियान्विति ही है। ब्रिटिश दलिया प्रणाली की कुछ विशेषताएं निम्न हैं। पहली, द्विदलिया पद्धति। ब्रिटिश दलिया प्रणाली की सबसे प्रमुख व्यवस्था, देश में लगभग समान रूप से शक्तिशाली दो सुसंगठित दल हैं और वही देश की राजनीति पर छाए रहते हैं। विधिता दो से अधिक दल हैं, उदाहरणार्थ 1966 में 30 और 1970 एवं 74 में 15 अन्य राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। लेकिन लंबे समय से शासन की शक्ति दो में से किसी एक दल को ही प्राप्त हुई और इन दो में ही दोनों को ही देश में प्रभुत्व स्थान प्राप्त है। अतः दलिया प्रणाली को द्विदलिया पद्धति कहता है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजा के समर्थक कैविलियर्स और धार्मिक सहिष्णुता और संसद के समर्थक राउंडहेड्स कहलाए, जिन्हें आज राजतंत्रवादी और गणतंत्रवादी कहते हैं। संसद की सर्वोच्चता निश्चित रूप से स्थापित होने के बाद इनके नए नाम व्हिग और टोरी पड़ गए। 1823 के सुधार अधिनियम के पारित होने के बाद इन दलों ने नाम उदार और अनुदार हो गए। अनुदार दल स्थापित व्यवस्था को बनाए रखने का समर्थक, लेकिन उदार दल शासन पद्धति, उद्योग तथा समाज कल्याण के क्षेत्र में सुधारों का समर्थक था। 20वीं सदी में मजदूर दल के उदय से ऐसा प्रतीत हुआ कि अब ब्रिटेन में द्विदलीय के स्थान पर त्रिदलीय पद्धति स्थापित हो जाएगी, किंतु मजदूर दल की शक्ति बढ़ने के साथ साथ उदार दल का पतन हो गया और ब्रिटिश राजनीति में दो ही दल का प्रभुत्व बना रहा। 1872 में गिलबर्ट ने इस द्विदलीय पद्धति की ओर लक्ष्य करके हुए लिखा, यह विधि का कैसा विधान है कि इस देश में जो भी छोटा बालक या बालिका पैदा होती है और जीवित रहती है, वही या तो छोटा उदारवादी बालक या अनुदारवादी बालक होता है। वही सस्ती अब भी है। अंतर केवल यह है कि उदारवादी बालक ने मजदूर दलिया बालक का रूप ग्रहण कर लिया है। फरवरी 1974 के चुनाव से द्विदलीय पद्धति के समाप्त होने की आशंका उत्पन्न हो गई थी, लेकिन अक्टूबर 1974 था, उसके बाद मई 79, 83, 87 और 1992 के चुनाव परिणामों ने इस आशंका को निर्मूल कर दिया है। ब्रिटेन के दोनों प्रमुख दल, अनुदार दल और मजदूर दल, कितनी अधिक सीमा तक शक्तिशाली हैं, इसका प्रमाण यह है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद के 51 वर्षों के संवैधानिक इतिहास में 24 वर्ष मजदूर दल और 27 वर्ष अनुदार दल के हाथों में सत्ता की बागडोर रही। द्विदलीय पद्धति के कारण। ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति के उदय और विकास के कई कारण हैं। प्रथमतः, अंग्रेजी भाषा भाषी व्यक्ति सिद्धांतवादी होने के बजाय व्यवहारवादी होते हैं और वे सैद्धांतिक मतभेदों में उलझकर नवीन राजनीतिक दलों को जन्म देने के बजाय उस द्विदलीय पद्धति को बनाए रखना चाहते हैं जो व्यवहार में ठीक प्रकार से कार्य कर रही है। सोलवेडर डी मेडिग्याग्रा के अनुसार द्विदल पद्धति ब्रिटिश जाति की उस मनोवृत्ति का परिणाम है जो राजनीति को एक खेल मानती है और राजनीतिक जीवन को केवल खिलाड़ियों की दो टीमों के बीच संघर्ष। द्वितीय, ब्रिटेन में यूरोप के अन्य देशों के समान राष्ट्रीयता, धर्म और भाषा की समस्या नहीं है जो देश को खंडित करती हैं, जिन्होंने फ्रांस और इटली जैसे बहुदलीय प्रणाली को जन्म दिया है। तृतीय, द्विदलीय पद्धति को जन्म देने वाला एक प्रमुख कारण ब्रिटिश चुनाव पद्धति है। यूरोप के अन्य देशों की भांति ब्रिटेन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली नहीं, वरन साधारण बहुमत की प्रणाली और एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है, और इसी कारण छोटे छोटे राजनीतिक दलों का विकास नहीं हो सका। ड्यूबर्जर के अनुसार दो दलीय प्रणाली वास्तव में इस निर्वाचन प्रणाली का फल है, जिसके अनुसार संघर्षरत उम्मीदवार में से वही विजयी माना जाता है जिसे सर्वाधिक मत प्राप्त होता है, अर्थात उसके असफल प्रतिद्वंदियों को प्राप्त मत व्यर्थ जाते हैं। चतुर्थ, ब्रिटिश लोक सदन के सभा भवन और कार्य पद्धति ने भी द्विदलीय पद्धति को अस्थायी बनाने में योग दिया है। ब्रिटिश लोक सदन का आकार अनुप्रस्थाकार यानी हॉरिजॉन्टल है और आमने सामने बैठने की इस पद्धति को कोई सदस्य सहज ही अपने दल की निष्ठा का त्याग नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त लोक सदन की कार्यविधि ही ऐसी है कि इसमें तीसरे दल के लिए कोई स्थान नहीं है। बहुमत वाला दल कार्यक्रम प्रस्तावित करता है, अल्पमत इस दल का विरोध करता है और संसदीय अधिवन जो राजनीतिक दलों का सीधा संघर्ष हो जाता है। द्विदलीय पद्धति ने ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था को बहुत अधिक प्रभावित किया है। द्विदलीय पद्धति के कारण आम चुनाव में एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होना अवश्यंभावी है और यह स्पष्ट बहुमत सबल तथा अस्थायी मंत्रिमंडल को जन्म देता है। इस द्विदलीय पद्धति के कारण ही ब्रिटिश संसद की शक्ति में ह्रास और मंत्रिमंडल की शक्ति में वृद्धि हुई है। ब्रिटिश संसद में द्विदलीय पद्धति का प्रणाली का विपक्ष और पक्ष, फॉर एंड अगेंस्ट केस ऑफ टू पार्टी सिस्टम। ब्रिटेन की यह द्विदलीय प्रणाली बहुत अधिक विवादास्पद रही है। एक और डॉक्टर फाइनर लॉस्की जैसे विचारकों ने इसे ब्रिटिश प्रजातंत्र की सफलता का आधार बनाया है, तो दूसरी ओर रेमजे म्योर ने अपनी पुस्तक हाउ ब्रिटेन इज गवर्न में द्विदलीय पद्धति की कटु आलोचना की है। द्विदलीय पद्धति में विपक्ष के समूह को निम्नलिखित बातें कही जाती है। उनके द्विदलीय पद्धति के विपक्ष में मतदान की स्वतंत्रता सीमित होती है। रेमजे म्योर ने कहा है कि प्रत्येक राष्ट्र में सदा दो से अधिक विचारधाराएं होती है, और इस कारण जब केवल दो राजनीतिक दल होते हैं तो नागरिकों के मतदान की स्वतंत्रता बहुत अधिक सीमित हो जाती है। व्यवहार में एक समस्या के दो से अधिक पक्ष होने संभव हैं, और ऐसा हो सकता है कि मतदाता का एक बड़ा भाग दोनों राजनीतिक दलों में से किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा से सहमत ना हो। ऐसी स्थिति में ही राजनीतिक दल होने पर इन व्यक्तियों को या तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता में तटस्थ रहना पड़ता है या छोटी बुराई को छांटना होता है। दूसरा, बहुमत दल की निरंकुशता। द्विदल प्रणाली होने के कारण एक ही राजनीतिक दल के हाथ में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका संबंधी शक्ति होती है, और इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसे निरंकुश बहुमत का जन्म होता है जो सदा ही अल्पमल को कुचलता है और उसकी मांग को अवहेलना करता है। तीसरा, व्यवस्थापिका के महत्व में कमी और मंत्रिमंडलीय तानाशाही। द्विदलीय पद्धति के विरुद्ध रेमजे म्योर और आम विचारकों की सबसे प्रमुख आपत्ति यही है कि इसके कारण ब्रिटेन में व्यवस्थापिका के महत्व और सम्मान में कमी तथा मंत्रिमंडल की तानाशाही का विकास हुआ है। व्यवस्थापिका के बहुमत दल को दलीय अनुशासन के कारण मंत्रिमंडल का सदैव ही समर्थन करना होता है, इसे व्यवस्थापिका की सत्ता सीमित हो जाती है। व्यवस्थापिका का एक लेखा संस्था है, दल के सदस्य कार्यपालिका की इच्छानुसार मत देने वाले यंत्रमात बंद कर रह जाते हैं। रेमजे म्योर का विचार है कि द्विदलीय पद्धति ने व्यवस्थापिका के महत्व और सम्मान और शक्ति में इतनी कमी कर दी है कि आज ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने एक अधिनायक का रूप ग्रहण कर लिया है, और यह स्थिति ब्रिटेन में प्रजातंत्र के लिए निश्चित रूप से चिंताजनक है। चौथा, अनेक हित बिना प्रतिनिधित्व के। देश की राजनीति में जब केवल दो ही राजनीतिक दल होते हैं तो अनेक वर्गों और हितों की व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व ही नहीं प्राप्त हो जाता, और यह स्थिति प्रजातंत्र के लिए उचित नहीं होती। अब ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति के पक्ष में कुछ तर्क। द्विदलीय प्रणाली के विपक्ष में बातें कही जा सकती हैं, लेकिन इसका पक्ष विपक्ष की तुलना में निश्चित रूप से बहुत अधिक सबल है। द्विदलीय पद्धति से मुख्य लाभ निम्न हैं। पहला, वास्तविक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना होती है। प्रजातंत्र का वास्तविक अभिप्राय यह है कि जनता के द्वारा ही सरकार का निर्माण किया जाए, लेकिन बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का निर्माण जनता द्वारा नहीं वरन राजनीतिक दलों के बीच पारस्परिक समझौतों द्वारा होता है। केवल द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत ही सरकार जनता की इच्छा का प्रत्यक्ष परिणाम होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत वही दल शासन का संचालन करता है जिसे मतदाताओं का बहुमत प्राप्त हो। यह स्थिति प्रजातांत्रिक धारणा के अनुकूल है। दो, सरकार का निर्माण सरल। ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति होने के कारण आम चुनाव में दो में से एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने से सरकार का निर्माण आसानी से होता है। अब इसके अतिरिक्त यदि एक सरकार का पतन हो जाए तो दूसरे विरोधी दल तत्काल सरकार निर्माण के लिए तत्पर रहता है, और संवैधानिक गतिरोध कभी उत्पन्न नहीं होता। तीसरा, शासन में स्थायित्व निरंतरता। शासन का सबसे अधिक स्थायित्व तो सुदृढ़ एवं स्थायी रूप होता है जिसे द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त होता है। मंत्रिमंडल को व्यवस्थापिका में शक्तिशाली दल का समर्थन प्राप्त होता है, जिसके आधार पर मंत्रिमंडल धीरतापूर्वक शासन कार्य संचालित करता है। ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति होने के कारण सरकारें अस्थायी होती हैं और कार्यक्रम तथा नीति को विश्वासजनक रूप से पारित करती है। चौथा, शासन में एकता और उत्तरदायित्व की व्यवस्था। शासन कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए शासन में नितांत एकता आवश्यक होती है, और इस प्रकार की एकता द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत ही संभव है। इसके अतिरिक्त द्विदलीय प्रणाली में शासन की कुशलता और अकुशलता का दायित्व तो आसानी से स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि बहुमत वाले दल ही शासन के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। पांचवा, संगठित विरोधी दल। राजनीतिक दल शासन संचालन का कार्य ही नहीं करते वरन शासन को नियंत्रित करने का भी कार्य करते हैं। शासन को नियंत्रित करने के कार्य उसी समय भलीभांति किया जा सकता है जबकि विरोधी राजनीतिक दल सुसंगठित और पर्याप्त शक्तिशाली हो। ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति होने के कारण विरोधी दल सदैव ही स्थिति में होता है कि वह शासन को मर्यादित रख सके। वस्तुतः प्रतिनिधिक शासन के संचालन के लिए द्विदलीय प्रणाली ही सर्वाधिक उपयुक्त है। द्विदलीय प्रणाली के लाभों का वर्णन करते हुए लास्की ने लिखा है, यही एकमात्र प्रणाली है जिसके द्वारा जनता निर्वाचन के समय अपने शासन का प्रत्यक्ष चुनाव कर सकती है या उस शासन को अपनी नीति के अनुसार कानून बनाने की क्षमता प्रदान करती है। यह उसकी सफलता के परिणामों को समझ में आने वाले रूप में सामने लाती है। वह दूसरे दल के शासन को अविलंब स्थापना भी कर सकती है। डॉक्टर फाइनर और ब्राइस आदि लेखकों द्वारा भी ऐसे विचार व्यक्त किए गए हैं। इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि एक विशाल देश में संसदीय जनतंत्र द्विदलीय पद्धति के आधार पर ही सफलता प्राप्त कर सकता है, और ब्रिटेन में संसदीय प्रजातंत्र की सफलता का श्रेय द्विदलीय प्रणाली को ही है। अब दूसरा, सुदृढ़ संगठन और केंद्रीयकरण। ब्रिटेन के राजनीतिक दल बहुत अधिक संगठित और केंद्रीकृत हैं। संसदीय शासन पद्धति के अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में निकट संपर्क आवश्यक होता है, जिससे सुदृढ़ तथा केंद्रीकृत राजनीतिक दलों के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। ब्रिटिश राजनीतिक दलों की वास्तविक शक्ति दल के शीर्ष संगठन में निवास करती है, और वहीं से दलीय क्रियाकलापों का नियंत्रण और संचालन होता है। ब्रिटेन में नीचे से ऊपर तक समस्त राजनीतिक दल एक सूत्र में बंधा होता है। राजनीतिक विशेषताओं की ब्रिटेन राजनीतिक व्यवस्था की तीसरी व्यवस्था, कठोर अनुशासन। ब्रिटेन में सुदृढ़ और केंद्रीकृत राजनीतिक दलों का स्वाभाविक परिणाम कठोर दलीय अनुशासन में देखा जा सकता है। कार्टर और अन्य के कथानुसार ब्रिटिश दल पद्धति की सरलता तथा अनुशासन अमरीकावासियों के लिए प्रशंसा तथा ईर्ष्या का विषय है। अमेरिका में अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण कांग्रेस में किसी सदन में किए गए मतदान का सरकार के स्थायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इस प्रकार से अनेक बार दल के सदस्य अपने दल के निर्देश के विरुद्ध कांग्रेस में मतदान करते हैं। लेकिन ब्रिटेन में सरकार का भविष्य लोक सदन के प्रांगण में निश्चित होता है, और इसी कारण ब्रिटेन लोकसभा में दलीय सचेतकों की व्यवस्था की गई है, जो दलीय नेताओं के साथ संपर्क रखते हुए सदस्यों को निर्देश देते रहते हैं, और सदस्यों के लिए निर्देश का पालन आवश्यक होता है। न केवल अमेरिका वरन अन्य देशों के राजनीतिक दलों की तुलना में भी ब्रिटिश राजनीतिक दल निश्चित रूप से अधिक अनुशासित है। चौथी, नेता की सर्वोच्च स्थिति। सभी देशों के राजनीतिक दलों में दलीय नेता का महत्व होता है, किंतु ब्रिटेन में यह महत्व सर्वोपरि है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में दो प्रभावशाली व्यक्तियों ग्लेडस्टोन और डिजराइली के बीच प्रतिद्वंदिता प्रारंभ होने के समय से ब्रिटिश जनता दलीय कार्यक्रम को नहीं बल्कि दलीय नेता को अपना प्रदान करती है। और जब चर्चिल अथवा एटली, हिल्थ, बेल्सन, कैलहन या मार्गरेट थैचर के आधार पर मतदान किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से दलीय नेता दलीय राजनीति में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लेता है। संसद सदस्य यह समझ लेते हैं कि उसकी विजय का आधार नेता का व्यक्तित्व है, और नेता को अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करते हैं। पांचवा, वर्ग प्रकृति। ब्रिटिश दल पद्धति का एक लक्षण दलों की वर्ग प्रकृति है, जिसका तात्पर्य यह है कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दल अलग अलग वर्गों का निश्चय करते हैं। मजदूर दल मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है, अनुदार दल जमींदारों, उद्योगपतियों, धनियों और व्यापारिक वर्गों का। लेकिन इनके साथ यह भी तथ्य है कि न तो मजदूर दल अकेले मजदूर दल के समर्थन के आधार पर सत्ता प्राप्त कर सकता है, और न ही अनुदार दल जमींदारों और व्यापारियों को उच्च वर्ग के समर्थन के आधार पर। इसे दोनों राजनीतिक दल बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग को, जो किसी एक राजनीतिक दल के साथ बंधा हुआ नहीं है, अपनी ओर आकर्षित करने तथा विरोधी वर्ग के कुछ मतदाताओं को भी समर्थन प्राप्त करने के लिए सक्रिय रहते हों। यही कारण है कि चुनाव के समय मजदूर दल का समाजवाद नरम और समझौतावादी हो जाता है, और अनुदार दल की अनुदारता प्रगतिशील रूप ग्रहण कर लेती है। न्यूमैन के शब्दों में, अनुदारवादियों को श्रमिकों का ध्यान रखना होता है, और मजदूर दल व्यापारी वर्ग की पूर्णरूपेण उपेक्षा नहीं कर सकता। छठा, निरंतर सक्रियता। अमेरिका और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले अन्य देशों में राजनीतिक दल चुनाव के बाद 2-3 वर्ष के लिए राजनीति के प्रति उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि यह स्पष्ट हो जाता है कि एक निश्चित समय के पूर्व सरकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन ब्रिटेन में संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण विरोधी राजनीतिक दल सरकार के पतन हेतु सदैव सक्रिय रहते हैं। राजनीतिक दलों के लिए सक्रिय रहना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि कभी भी 3 सप्ताह के नोटिस पर चुनाव की घंटी बज जाती है। जैसे 1950 के बाद 1951 के चुनाव हुए, 1964 के बाद 1966 और फरवरी 74 के बाद अक्टूबर 74 में। इसके अतिरिक्त उपचुनावों का भी महत्व होता है, और कई बार तो उन पर सरकार का अस्तित्व निर्भर करता है। अतः राजनीतिक दल सभाएं बुलाने, साहित्य तैयार करने, स्थानीय शाखाओं को संगठित करने, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव में भाग लेने, उपचुनाव में भाग लेने और सामान्य जनता से संपर्क स्थापित करने में निरंतर सक्रिय होते हैं। सातवां, संयम और समझौते की प्रकृति। ब्रिटिश राजनीतिक दलों का एक अन्य महत्वपूर्ण लक्षण समय और समझौते की प्रवृत्ति है, जिसने ब्रिटिश प्रजातंत्र को सफलता प्रदान की है। दोनों राजनीतिक दलों के गठन का आधार सैद्धांतिक भेद है, भाषा, जाति या धर्मगत भेद नहीं, और दोनों ही राजनीतिक दलों का संवैधानिक साधनों में पूर्ण विश्वास है। इसके अतिरिक्त शासक दल इस बात को स्वीकार करता है कि विरोधी दल को शासन की आलोचना करने का अधिकार है, और विरोधी दल मानता है कि बहुमत दल को जनता ने शासन करने का उत्तरदायित्व सौंपा है। दोनों ही राजनीतिक दल इस बात के प्रति भी सचेष्ट हैं कि उनकी स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। आज यदि शासक दल है तो कल उसे विरोधी दल की स्थिति प्राप्त हो सकती है, और आज के विरोधी दल कल के शासक बन सकते हैं। इसलिए न तो शासक दल मनमानी करता है और न ही विरोधी दल विरोध के लिए विरोध करते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान, सहिष्णुता, समझौते की प्रवृत्ति अपनाते हैं। आठवां, लूट प्रथा का अभाव। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के बाद अस्थायी पदाधिकारियों के एक बड़ी संख्या में परिवर्तन होता है। पहले से कार्य कर रहे पदाधिकारियों के स्थान पर उन व्यक्तियों के पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है जिन्हें चुनाव के समय राष्ट्रपति को विजयी बनाने में योगदान दिया है। इसे लूट की पद्धति कहते हैं, लेकिन ब्रिटिश राजनीतिक दलों के द्वारा इस प्रकार का आचरण नहीं किया जाता। प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की निश्चित पद्धति है, और चाहे जिस राजनीतिक दल की सरकार का निर्माण हो, प्रशासनिक अधिकारी अस्थायी रूप से अपने पदों पर बने रहते हैं, जो कि अमेरिका की तुलना में निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। जून 1983 के आम चुनाव, प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटिश साम्राज्य से परामर्श लेकर 13 मई 1983 को लोकसदन भंग करवा दिया, और 9 जून 1983 को लोकसदन के चुनाव हुए। जून 1983 के चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 4,31,76,870 थी। उदार दल और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये चुनाव आपसी गठबंधन के आधार पर लड़े। इन चुनावों में लगभग 73% मतदाताओं ने मताधिकारियों का प्रयोग किया। इसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण दो निष्कर्ष ये हैं। पहला, सर्वप्रथम तथ्य यह है कि ब्रिटिश मतदाताओं को एक दलीय सरकार ही स्वीकार है, वे मिली जुली सरकार के पक्ष में नहीं है। दूसरा, इन चुनाव में अनुदार दल ने 43.6% मत, मजदूर दल ने 29% और उदार दल सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी गठबंधन ने 26% मत प्राप्त किए। इस प्रकार जनता के बीच विपक्षी शक्ति विभाजित हो गई, और उदार दल गठबंधन ने मजदूर दल के मूल्य पर अपने मत प्रतिशत में वृद्धि की। जून 1987 के आम चुनाव, 11 जून 1987 को संपन्न हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव में श्रीमती मार्गरेट थैचर की कंजर्वेटिव पार्टी को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। 650 सदस्य वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी को 376 स्थान प्राप्त हुए। लेबर पार्टी 229, गठबंधन को 22 व अन्य को 23 स्थान मिले। कंजर्वेटिव पार्टी को 1983 की तुलना में 17 सीटें कम मिली, जबकि लेबर पार्टी को 20 अधिक मिले। अप्रैल 1992 के आम चुनाव में अनुदार दलों को 336 सीटें यानी 42.7% मत प्राप्त हुए। श्रमिक दल को 271 सीटें 35% मत, और उदार दल को 20 सीटें 18% मत, तथा शेष 24 सीटों पर अन्य दल विजयी हुए। 150 वर्ष बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही राजनीतिक दल ने चौथी बार विजय प्राप्त की, यदि इस बार उसके बहुमत में कमी हुई है। ब्रिटेन में प्रमुख राजनीतिक दल, उनका संगठन और सिद्धांत। वर्तमान समय में ब्रिटिश राजनीति के प्रमुख दल हैं अनुदार दल और मजदूर दल। इसके अतिरिक्त 19वीं और 20वीं सदी के प्रारंभिक 20 वर्षों में उदार दल की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, और फरवरी 1974 के आम चुनाव में भी उसे 19.3% जनता का समर्थन प्राप्त हुआ। 1981 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई, और जून 1983 के आम चुनाव उदार दल और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने आपसी गठबंधन के आधार पर लड़कर 26% मत प्राप्त किया। 1984 के चुनाव में गठबंधन को 22 स्थान मिले। अतः इन तीनों राजनीतिक दलों के सिद्धांत और संगठन का अध्ययन किया जाएगा। सर्वप्रथम अनुदार दल, कंजर्वेटिव पार्टी। अनुदार दल के सिद्धांत। अनुदार दल, जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, ब्रिटेन के परंपरागत आचार विचार और संस्था को बनाए रखने के पक्ष में है। उसका सिद्धांत है कि इसमें परिवर्तन तभी किया जाना चाहिए जबकि परिवर्तन करना आवश्यक हो जाए, और यह भी तब परिवर्तन धीरे धीरे ही किया जाना चाहिए। अनुदार दल निजी संपत्ति, संस्थापित चर्च, राजमुकुट, साम्राज्य और देश पर पूंजीपति व कुलीन वर्ग के प्रभुत्व का समर्थक है। डॉक्टर फाइनर का कथन है कि अनुदारवाद का सार उस द्वारा समर्पित सामाजिक संस्थाओं व उसकी प्रगति संबंधी धारणाओं से स्पष्ट हो जाता है। अनुदार दल जिन सामाजिक संस्थाओं का समर्थन करता है, उनमें राजमुकुट, राष्ट्रीय एकता, चर्च, एक शक्तिशाली शासक श्रेणी और व्यक्तिगत संपत्ति की राय के नियंत्रण में स्वतंत्रता है। वैदेशिक क्षेत्र में अनुदार दल ब्रिटिश अहंग का समर्थक रहा है, और भूतकाल में उसने ब्रिटिश साम्राज्य को बनाए रखने की अथक चेष्टा की है। उसने आयरलैंड की स्वतंत्रता का कड़ा विरोध किया और भारत का स्वतंत्रता का भी विरोधी रहा है। भूतकाल में उसने विश्वास को अपनाया कि अंग्रेजी जाति का कर्तव्य संसार भर की पीछे जातियों को सभ्य बनाना है, चाहे यह कार्य उसकी इच्छा का विरोध ही क्यों न हो और चाहे इसके लिए पार्श्विक शक्ति का मार्ग ही क्यों न अपनाना पड़े। अनुदार दल प्रबल नौकरशाही के पक्ष में है और उसका विचार है कि लॉर्ड सभा के संगठन में चाहे सुधार किया जाए लेकिन वर्तमान समय की अपेक्षा उसे अधिक शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। साम्राज्यवाद समाप्त हो चुका है और वर्तमान समय में अनुदार दल या मजदूर दल के विदेश नीति में कोई विशेष अंतर नहीं रहा है, किंतु दक्षिण रोडेशिया और आव्रजन नियमों यानी इमिग्रेशन लॉ आदि के संबंध में अपनाई गई नीति से उनके अहमवादी दृष्टिकोण का आभास मिलता है। अनुदार दल का विचार है कि अभी ब्रिटेन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जानी चाहिए। जून 1970 में पद ग्रहण के बाद अनुदार दलीय हित सरकार के द्वारा पश्चिम यूरोप के राज्य के साथ संबंध स्थापित करने की नीति अपनाई गई और इसी के अंतर्गत ब्रिटेन ने यूरोपीय साझा बाजार की सदस्यता प्राप्त की। अनुदार दलीय सरकार अमेरिका के साथ घनिष्ठ मैत्री संबंध स्थापित करने और ब्रिटेन की परमाणु शक्ति के विकास हेतु भी प्रयत्नशील रही। 30 जनवरी से 3 फरवरी 1973 की अमेरिकी यात्रा में तत्कालीन प्रधानमंत्री हीथ ने इसमें आंशिक सफलता भी प्राप्त की। अनुदार दल की परंपरागत विचारधारा पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करने की रही है, लेकिन द्वितीय महायुद्ध के दौरान जब अनुदार दल के सम्मुख मजदूर दल की गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई तो अनुदार दल की नीति में प्रगतिशीलता के चिन्ह दिखाई देने लगे। सन 1947 में रूढ़िवादी दल के सम्मेलन द्वारा स्वीकृत औद्योगिक प्रपत्र इंडस्ट्रियल चार्टर में केंद्रीय नियोजन को देश की प्रगति के लिए आवश्यक बनाया गया। इसी प्रकार 1949 में प्रकाशित द राइगर्ट रोड फॉर ब्रिटेन नामक नीति पत्र में राज्य की ओर से आवश्यक समाज सेवाओं व सभी के लिए रोजगार की व्यवस्था किए जाने पर जोर दिया गया। दल के 1951 के कार्यक्रम में गृह निर्माण योजना अपनाने पर जोर दिया और इसके बाद भी दल नियंत्रण सामाजिक सुरक्षा और लोक कल्याण की नीति अपनाता रहा। 1972 में अनुदार दलीय सरकार द्वारा अधिनियम पारित कर 80 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी व्यक्तियों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई। 1975 में दल की नीति में परिवर्तन। अक्टूबर 1974 के चुनाव में अनुदार दल की पराजय के बाद दल की नीति में परिवर्तन हुआ और दल के द्वारा एडवर्ड हीथ के स्थान पर मार्गरेट थैचर को अपना नेता चुना गया। महायुद्ध के बाद से ही और विशेष रूप से पिछले 10 वर्षों में हीथ के नेतृत्व में अनुदार दल के द्वारा दक्षिण पंथ और वाम पंथ के बीच समन्वय स्थापित करने की नीति अपनाई गई थी, लेकिन अक्टूबर 1975 में आयोजित ब्लैकपूल सम्मेलन से यह स्पष्ट हो गया कि श्रीमती थैचर के नेतृत्व में दल ने समन्वयवादी नीति को छोड़कर स्पष्ट रूप से समाजवाद का विरोध और दक्षिण पंथ का समर्थन करने की नीति अपना ली है। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के लिए समाजवाद बुरा है और हमें वर्तमान की तुलना में अधिक समाजवाद की नहीं वरन कम समाजवाद की आवश्यकता है। मैं समाजवाद का विरोध करती रहूंगी। पूंजीवादी राज्य समाजवादी राज्यों की तुलना में अधिक संपन्नता और अपने नागरिकों को अधिक प्रसन्नता प्रदान करते हैं। नवीन नेतृत्व 3 शताब्दियों से चली आ रही सहमति की राजनीति की समाप्ति पर अनुदार दल को टोरीवाद का पुराना और विशिष्ट दर्शन पुनः प्रदान करना चाहता है। मैं 1979 के चुनाव में श्रीमती मार्गरेट थैचर के द्वारा अनुदार दल के चुनाव अभियान का संचालन उन्हीं रेखाओं पर किया गया जिन पर वे 1974 में दल की नेता निर्वाचित होने के बाद जोर दे रही थी। अपने चुनावी वायदों में उन्होंने कहा कि दल आयकर में कटौती करके जीवन स्तर उठाएंगे, मजदूर संघों के अधिकारों में कमी करेगा, नए उद्योग शुरू करवाएगा जिससे कि रोजगार और धन में बढ़ोतरी हो और अप्रवासन के संबंध में कठोर नीति अपना लेगा। 1983, 1987 एवं 92 के आम चुनाव में अनुदार दल ने पुनः इन्हीं नीतियों को दोहराया और जनता ने पुनः इन्हीं नीतियों को स्वीकृति प्रदान कर दी। 1987 से 90 के वर्षों में थैचर सरकार ने समाजवाद को नया स्वरूप प्रदान करने की योजना के अंतर्गत और राष्ट्रीयकरण की दिशा में कदम उठाए। पहले जल और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था और उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना का और राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अनुदार दल के सदस्यों में जमींदार, उद्योगपति, व्यापारी, साहूकार, पादरी आदि हैं। बौद्धिक वर्ग के व्यक्तियों के बड़े भाग का भी झुकाव अनुदार दल के प्रति है। यह भी देखने में आया है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों और युवा आयु के व्यक्तियों की अपेक्षा प्रौढ़ आयु के व्यक्तियों और वृद्धों का झुकाव अनुदार दल की ओर अधिक होता है। वर्तमान समय में दल के सदस्यों की संख्या लगभग 25 लाख है। अनुदार दल का संगठन। सन 1832 का सुधार अधिनियम पारित होने के बाद जब मतदाताओं की संख्या बढ़ गई तो दल के द्वारा केंद्रीय संगठन की आवश्यकता अनुभव की गई। सन 1867 में कंजर्वेटिवों का तथा यूनियनिस्टों का राष्ट्रीय संघ स्थापित हुआ। डिजराइली ने 1870 में दल का केंद्रीय कार्यालय खोला और संगठन में आवश्यक परिवर्तन हुए। निर्वाचन क्षेत्र में इनकी शाखाएं स्थापित की गई और संगठन को व्यापक रूप प्रदान किया गया। संसदीय दल आमदार दल का एक अखिल देशीय संगठन है जिसका अधिवेशन वर्ष में एक बार होता है। इस अधिवेशन में वार्षिक क्रियाकलाप का सिंहावलोकन किया जाता है व आगामी वर्ष के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाता है। आमदार दल का यह सम्मेलन मजदूर दलीय सम्मेलन से कम शक्तिशाली होता है क्योंकि इसके द्वारा पारित प्रस्ताव मात्र परामर्शात्मक होते हैं और दलीय नेता द्वारा इन्हें अस्वीकार किया जा सकता है। राष्ट्रीय संघ की अपनी एक केंद्रीय परिषद है और कार्यकारिणी समिति भी होती है। केंद्रीय परिषद दल की प्रशासनिक संस्था है लेकिन अपने बड़े आकार के कारण यह प्रभावदायक रूप में कार्य नहीं कर पाती। इसकी वर्ष में दो बैठकें होती हैं। कार्यकारिणी परिषद की 6 माह में एक बार बैठक होती है लेकिन इसके कार्य मात्र परामर्शात्मक ही हैं। दल पर नियंत्रण और निर्देशन की अंतिम शक्ति दलीय नेता को प्राप्त होती है और वह केंद्रीय परिषद और कार्यकारिणी समिति ऐसे साधन मात्र हैं जिनके माध्यम से दल के सभी वर्गों से संपर्क स्थापित रखा जा सकता है। दल का प्रशासनिक संगठन और अनुशासन बनाए रखने का कार्य लंदन स्थित केंद्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है जिसका प्रधान दल का अध्यक्ष होता है। केंद्रीय कार्यालय दलीय उम्मीदवारों का मनोनयन करता है और दल के वित्तीय मामलों का प्रबंध करता है। यह दल की नीति का प्रचार करता और दलीय उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाता है। केंद्रीय कार्यालय पर दल के नेता का ही नियंत्रण होता है जिसे दलीय संगठन में केंद्रीय स्थिति प्राप्त होती है। दलीय कार्यक्रम के निर्धारण में नेता का महत्व सर्वोपरि होता है और वर्तमान समय में तो नीति घोषणा भी नेता के ही नाम से की जाती है जैसे निर्वाचकों के नाम चर्चिल की नीति घोषणा। लोक सदन का प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र दल का प्राथमिक संगठन होता है। सन 1965 के पूर्व तक अनेक बार दल के नेता के संबंध में अनिश्चित स्थिति होती थी और ऐसे समय में यदि अनुदार दल बहुमत में होता तो सम्राट दल के जिस नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता या दल का भूतपूर्व नेता जिसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करता वही दल का नेता हो जाता था। सन 1963 में नेता पद से त्यागपत्र देते हुए मैकमिलन ने अपने उत्तराधिकारी के विषय में डगलस होम के पक्ष में राय दी। डगलस होम को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया गया लेकिन इस पर दल के नेताओं में तीव्र असंतोष था जिसे अधिक समय तक दबाया नहीं जा सका। सन 1965 में होम का त्यागपत्र देना पड़ा और उसी समय से दलीय नेता के चुनाव की पद्धति को अपना लिया गया। अब अनुदार दल के लोक सदन के सदस्य विधिवत अपना नेता चुनते हैं और नेता का नाम पुष्टि करने के लिए एक विशेष समिति को भेजा जाता है जिसमें लोक सदन के सदस्य भावी उम्मीदवार लोकसभा के सक्रिय पीयर और राष्ट्रीय यूनियन के सदस्य सम्मिलित होते हैं। यही पद्धति प्रजातंत्रात्मक और उचित है। मई 1979 के चुनाव में श्रीमती थैचर के नेतृत्व में अनुदार दल सत्तारूढ़ हुआ और जून 1983 एवं 1987 के चुनाव में उसे पुनः सत्ता प्राप्त हुई। 1990 में आयोजित विभिन्न जनमत सर्वेक्षणों में बताया गया कि थैचर सरकार की लोकप्रियता में निरंतर गिरावट आ रही है और अनुदार दल श्रीमती थैचर के नेतृत्व में 1992 के आम चुनाव में विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। ऐसी स्थिति में अनुदार दल में श्रीमती थैचर के नेतृत्व को चुनौती दी गई जब मतदान में श्रीमती थैचर अपने मुख्य प्रतिद्वंदी माइकल हेसेलटाइन पर निर्णायक विजय प्राप्त नहीं कर सकी तब श्रीमती थैचर ने त्यागपत्र देने के निश्चय की घोषणा की। इसी स्थिति में अनुदार दल के नेतृत्व पद के लिए तीन उम्मीदवारों जॉन मेजर हेसेलटाइन तथा डर्म में जॉन मेजर विजयी हुए। 1990 के अंतिम दिनों में अनुदारवादी दल तीव्र गुटबंदी से ग्रस्त था। अप्रैल 1992 के आम चुनाव में अनुदार दल और उसके नेता जॉन मेजर ने आक्रामक चुनाव प्रचार को अपनाया। उसके चुनाव की दिशा थी देश खतरे में है, लिबरल डेमोक्रेटिक और लेबर नीतियों से देश के टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा। चुनाव में उनके दल को बहुमत प्राप्त हुआ और वे पुनः प्रधानमंत्री बने। मजदूर दल लेबर पार्टी। मजदूर दल की विधिवत स्थापना 1899 ट्रेड यूनियन कांग्रेस के एक प्रस्ताव के आधार पर फरवरी 1900 में हुई। उस समय इसका नाम श्रमिक प्रतिनिधित्व समिति रखा गया और 1906 में इसे बदलकर मजदूर दल किया गया। मजदूर दल के सिद्धांत। मजदूर दल की स्थापना मजदूरों तथा अन्य निम्न वर्ग के लोगों के हित साधन की दृष्टि से की गई थी, और मजदूर दल निश्चित रूप से समाजवादी विचारधारा वाला दल है। लेकिन मजदूर दल ने अपने समाजवाद की प्रेरणा मार्क्सवादी दर्शन से प्राप्त नहीं की है, और यह दल मार्क्सवादी समाजवाद की अपेक्षा लोकतंत्रीय समाजवाद में विश्वास करता है। मार्क्सवादी समाज से उसका भेद मूलतः दो बातों में देखा जा सकता है। प्रथमतः, मजदूर दल मार्क्सवाद के समान क्रांति की नीति में नहीं वरन सुधार नीति में विश्वास करता है। वह सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन हेतु शक्ति और बल प्रयोग के मार्ग को नहीं वरन संवैधानिक लोकतंत्र मार्ग को अपनाने के पक्ष में है। डॉक्टर फाइनर के शब्दों में, मजदूर दल दास कैपिटल की अपेक्षा बाइबिल से अधिक प्रभावित है। इस प्रकार 1950 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए श्रमिक दलीय सचिव मॉर्गन फिलिप्स ने कहा था, ब्रिटिश समाजवाद साम्यवाद की पद्धति पर नहीं वरन मैथोडिज्म ईसाई धर्म के एक ग्रंथ की पद्धति पर आधारित है। मजदूर दल के समाजवाद का साम्यवाद से दूसरा अंतर यह है कि मजदूर दल के अनुसार आर्थिक नियोजन का संचालन लोकतंत्रात्मक विधि से निर्वाचित सरकार द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन आर्थिक नियोजन के नाम पर सरकार द्वारा नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन नहीं किया जाना चाहिए। मजदूर दल साम्यवाद के नाम पर नागरिक स्वतंत्रताओं के मूल्य पर आर्थिक न्याय की प्राप्ति नहीं वरन नागरिक स्वतंत्रताओं के साथ आर्थिक न्याय की प्राप्ति करना चाहता है। इस प्रकार मजदूर दल लोकतांत्रिक साधनों से समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहता है। इसके अतिरिक्त समाजवाद के प्रति मजदूर दल का झुकाव सिद्धांतवादी नहीं वरन यथार्थवादी है, और उसने राष्ट्रीयकरण की उतनी सीमा तक अपनाया है जितनी सीमा तक इसे अपनाना आवश्यक था। 1945 से 1951 के काल में मजदूर दलीय सरकार ने बैंक ऑफ इंग्लैंड, कोयला उद्योग, यातायात उद्योग और लोहा तथा इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन 1951 के बाद मजदूर दल ने समझ लिया कि न तो राष्ट्रीयकरण आर्थिक क्षेत्र की सभी बुराइयों का हल है, और न ही राष्ट्रीयकरण के नाम पर ब्रिटिश मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। सन 1951 के बाद से ही मजदूर दल ने राष्ट्रीयकरण के स्थान पर समाजीकरण पर बल देना आरंभ किया, जिसका तात्पर्य यह है कि उद्योग चाहे व्यक्तिगत स्वामित्व के क्षेत्र में रहे, उनका संचालन सामाजिक हित की दृष्टि से होना चाहिए। वैदेशिक क्षेत्र में मजदूर दल साम्राज्यवाद विरोधी और शांतिवादी है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति पूर्ण आस्था रखता है। अनुदार दल की अपेक्षा मजदूर दल रक्षा व्यय को सीमित करने के पक्ष में है। अक्टूबर 1974 के चुनाव हेतु जारी किए गए घोषणा पत्र में मजदूर दल ने निजी कंपनियों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने, धनवानों पर अधिक कर लगाने व संपत्ति और शक्ति में ऐसा संतुलन स्थापित करने की बात कही जो श्रमिक वर्ग के हितों में हो। पद ग्रहण के बाद विल्सन ने कहा कि वे समाजवादी कार्यक्रम को लागू करेंगे। विल्सन के बाद कैलेहन सरकार द्वारा समाजवादी कार्यक्रम को लागू करने के विविध कदम उठाए गए। मजदूर दल का एक प्रमुख लक्ष्य श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा और श्रमिक संघों की शक्ति को बनाए रखना है, लेकिन इस संबंध में मजदूर दल किसी भी प्रकार की उग्र नीति अपनाने के पक्ष में नहीं है। अक्टूबर 1975 के दलीय सम्मेलन में दल के तत्कालीन नेता और प्रधानमंत्री विल्सन ने उग्र वामपंथियों और दक्षिणपंथियों दोनों के विरुद्ध चेतावनी दी और इस बात पर बल दिया कि ब्रिटेन के लिए समन्वयकारी नीति उचित है। मार्च 1976 में विल्सन द्वारा प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र की घोषणा किए जाने के बाद अप्रैल 1976 में जेम्स कैलेहन दल के नेता चुने गए। मई 1970 के चुनाव में दल का नेतृत्व जेम्स कैलेहन द्वारा ही किया गया, लेकिन चुनाव के बाद कैलेहन द्वारा नेता पद से त्यागपत्र दे दिया गया और उनके स्थान पर माइकल फुट दल के नेता चुने गए। 1979 से 1982 के काल में दल ने मध्यम मार्ग को छोड़कर वामपंथ की ओर बढ़ने का कार्य किया, लेकिन जून 1983 के चुनाव में मजदूर दल को 50 वर्ष में सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस स्थिति ने नेतृत्व के प्रति भी विरोध को जन्म दिया। अक्टूबर 1983 में नील किनोक मजदूर दल के नए नेता निर्वाचित हुए और दक्षिणपंथी विचारधारा के राय हेटरस्टले उपनेता चुने गए। अप्रैल 1992 के आम चुनाव में मजदूर दल ने अपनी सीटों में वृद्धि की। पहले उसे 227 सीट प्राप्त थी, अब उसकी सीटों की संख्या 271 हो गई और उसे 35% मत मिले। मजदूर दल ने आज पुनः अतिवादिता को छोड़कर वामपंथ और दक्षिणपंथ में समन्वय का मार्ग अपना लिया है। सदस्यता, मजदूर और उसके मजदूर संघ ब्रिटिश मजदूर दल की शक्ति के आधार हैं। मजदूर दल अपने व्यय का लगभग 70% भाग मजदूर संघों से ही प्राप्त करता है। मजदूर वर्ग तो इस दल का समर्थक है ही, बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग के ही एक भाग द्वारा इसका समर्थन किया जाता है, और यह दल व्यापारी वर्ग को भी आकर्षित करने हेतु प्रयत्नशील है। ब्रिटेन के 4,15,00,000 मतदाताओं में से मजदूर दल के नेता द्वारा अपने सदस्यों की संख्या 70,00,000 बतलाई जाती है। दल का संगठन, सन 1918 तक दल की सदस्यता केवल किसी संबंध संगठन की सदस्यता द्वारा ही प्राप्त की जा सकती थी, लेकिन अब सीधे ही मजदूर दल की सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन अब भी मजदूर दल की शक्ति का आधार ये संबंधन संगठन ही है और संबंध संगठनों में प्रमुख ये हैं। 600 से अधिक लोक सदन की निर्वाचित क्षेत्रीय दलों की इकाइयाँ, जिनमें लगभग 10 लाख व्यक्ति सदस्य हैं। ये दल वार्षिक सम्मेलनों में अपने प्रतिनिधि भेजते हैं और इन निर्वाचन क्षेत्रों के 11 क्षेत्रीय समूह बनाए गए हैं। दूसरा, मजदूर संघ, जिनकी संख्या 70 से अधिक है और जिनमें कुछ बड़े हैं तथा कुछ बहुत छोटे। उदाहरण के लिए परिवहन और साधारण श्रमिकों के संघ के 10 लाख सदस्य हैं। ये बड़े मजदूर संघ स्वयं अपने उम्मीदवार खड़े रखते हैं और उनकी सफलता निश्चित होती है। तीसरा, सहकारी समितियाँ, जो निर्वाचित क्षेत्रों के संगठन से सहयोग करती है। चौथा, समाजवादी सोसाइटियाँ, इनका गठन बुद्धिजीवी वर्ग का समर्थन प्राप्त करने के लिए किया गया है। इनमें कुछ प्रमुख हैं फेबियन सोसाइटी, समाजवादी चिकित्सकों व शिक्षकों के संघ आदि। दल की निर्धारित नीति करने वाला मुख्य अंग वार्षिक सम्मेलन है, जिसमें प्रत्येक संगठन को 6000 सदस्यों पर एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। संसद और उम्मीदवार इसके पदेन सदस्य होते हैं। दल की नियंत्रणकारी और प्रशासनिक सत्ता राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में निहित है। इसका चुनाव वार्षिक सम्मेलन द्वारा होता है और इसके 25 सदस्य होते हैं। संसदीय दल का नेता, उपनेता, कोषाध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय सम्मेलनों के बीच के काल में नीति संबंधी प्रश्नों का निर्णय करने, नियमों को लागू करने और अनुशासन बनाए रखने का काम इसी के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति संसद के लिए उम्मीदवारों को छांटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। दल के संसदीय अंग में सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। इनमें अधिकारियों में सभापति, उपसभापति, मुख्य सचेतक और सदस्यों द्वारा निर्वाचित एक समिति होती है। उदार पार्टी, लिबरल पार्टी। उदार दल जो अपने को व्हिग का उत्तराधिकारी मानता है, का अभ्युदय स्वेच्छाचारी शासन का विरोध करने के लिए हुआ। 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभिक चरण में उदार दल ने ग्रेट ब्रिटेन के राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक जीवन में अनेक सुधार किए हैं। आयरलैंड की स्वतंत्रता, मताधिकार संबंधी सुधार और स्थितियों को मताधिकार, मजदूरों की स्थिति में सुधार, लॉर्ड सभा की शक्तियों में कमी आदि महत्वपूर्ण सुधार इस दल के नेतृत्व में ही हुए हैं। भूतकाल में उदार दल सभी प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थक रहा है और वर्तमान में यह परंपरागत व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के साथ साथ आर्थिक समानता और स्वतंत्रता का समर्थक है। मजदूरों के अधिकारों को मान्यता देना और उनकी स्थिति सुधारने के पक्ष में है, किंतु इनके साथ ही राष्ट्रीयकरण और समाजवाद का विरोधी है। उदार दल उद्योगों और आर्थिक जीवन के विकेंद्रीकरण का समर्थक है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वह शांति का समर्थक है। अभी 1975 के दलीय सम्मेलन में उदार दल के द्वारा अपने लिए पूंजीवाद और समाजवाद दोनों से भिन्न मार्ग अपनाने की बात कही गई है। वर्तमान समय में उदार दलों के सदस्य की संख्या लगभग 13 लाख है। 1970 से उदार दल की शक्ति में वृद्धि होते हुए देखी गई और फरवरी 1974 के आम चुनाव में इसने 19.3% मत और लोकसभा में 15 स्थान प्राप्त किए। मई 1979 के आम चुनाव में उदार दल ने आशा की थी कि वह ब्रिटिश राजनीति में संतुलन बनाए रखने वाली एक तीसरी स्थिति को प्राप्त कर लेगा, लेकिन उदार दल को इसमें निराशा मिली। जून 83 के चुनाव में उदार दल ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ गठबंधन के रूप में लड़े और 26% मत प्राप्त किए, लेकिन इसे लोकसभा में लगभग 20 स्थान प्राप्त हो सके। अप्रैल 1992 के आम चुनाव में उदार दल को 18% मतों के साथ 20 सीटें प्राप्त हुई। उदार दल को प्राप्त हुए मतों के प्रतिशत की तुलना में लोकसभा में उसे बहुत कम स्थान प्राप्त हुए हैं और इसका कारण बहुमत की पद्धति तथा एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है। इसी कारण वर्तमान समय में उदार दल इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि ब्रिटेन में चुनाव हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। अन्य दो प्रमुख दलों की तुलना में उदार दलों में अनुशासन निश्चित रूप से ढीला है। चीन में राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी इन चाइना। चीन में एक दलीय व्यवस्था। चीन एक साम्यवादी राज्य है और राजनीतिक दलों के प्रसंग में चीन की स्थिति भारत, ब्रिटेन, अमेरिका या स्विट्जरलैंड आदि उदारवादी लोकतांत्रिक देशों के नितांत भिन्न है। इन उदार लोकतांत्रवादी देश में विभिन्न राजनीतिक दलों को गठन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन चीन में एक दलीय व्यवस्था है। चीन का संविधान साम्यवादी दल के अतिरिक्त अन्य किसी राजनीतिक दल को गठन और कार्यकरण की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता। समस्त शासन व्यवस्था अनिवार्य रूप से साम्यवादी दल के नेतृत्व में कार्य करती है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और अन्य संस्थाओं के लिए चीन में चुनाव होते हैं, लेकिन ये चुनाव एक दिखावा मात्र है, क्योंकि इनके आधार पर जनता साम्यवादी दल के स्थान पर किसी अन्य राजनीतिक दल की सरकार स्थापित नहीं कर सकती, चाहे वह साम्यवादी दल की सरकार से कितनी अधिक असंतुष्ट क्यों न हो। इस प्रकार चीन में विपक्षी दल जैसी कोई स्थिति नहीं है। 20वीं सदी के 90 और अंतिम दशक में चीन सुधारवाद के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन अक्टूबर 92 में आयोजित 14वीं पार्टी कांग्रेस में स्पष्ट कर दिया गया है कि चीन पाश्चात्य ढंग की बहुदलीय व्यवस्था को कभी नहीं अपनाएगा। 16वीं पार्टी कांग्रेस 2002 में भी इस बात को बलपूर्वक दोहराया है। साम्यवादी दल, भूमिका और संगठन, कम्युनिस्ट पार्टी, रोल एंड स्ट्रक्चर। चीन की शासन व्यवस्था में साम्यवादी दल की भूमिका। दल और शासन। साम्यवादी चीन की दलीय व्यवस्था विश्व के अन्य प्रजातंत्रात्मक देशों से भिन्न है। प्रजातंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत एक से अधिक राजनीतिक दलों के संगठन की व्यवस्था होती है, स्वतंत्रता होती है, लेकिन चीन में पूर्ण सोवियत संघ के समान ही एक दलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इस प्रसंग में पूर्व सोवियत संघ की व्यवस्था और 1954 के संविधान के अंतर्गत चीन की व्यवस्था में एक अंतर था। पूर्व सोवियत संघ में दल के महत्व को कानूनी मान्यता प्राप्त की हुई है, लेकिन 1954 के संविधान में साम्यवादी दल की भूमिका का कोई उल्लेख नहीं था। दोनों देशों की व्यवस्था में यह मात्र एक औपचारिक भेद था, लेकिन बाद में यह भेद भी समाप्त हो गया और 1975 के संविधान द्वारा शासन व्यवस्था में साम्यवादी दल की नेतृत्वकारी भूमिका को स्पष्टतया स्वीकार कर लिया गया। इस संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है, चीन के साम्यवादी दल को चीन की समस्त जनता की नेतृत्वकारी स्थिति प्राप्त है। श्रमजीवी वर्ग राज्य पर अपना नेतृत्व अपने अग्रणी साम्यवादी दल के माध्यम से ही रखता है। 1982 के नए संविधान की प्रस्तावना में भी साम्यवादी पार्टी के महत्व को स्वीकार किया गया है और कहा गया है कि चीन के साम्यवादी दल के नेतृत्व में चीनी जनता समाजवादी मार्ग का अनुसरण करती रहेगी। चीन की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत विधायी क्षेत्र की सर्वप्रमुख संस्था राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और कार्यपालिका क्षेत्र की सर्वप्रमुख संस्था राज्य परिषद है। 1982 के संविधान द्वारा इन दोनों ही संस्थाओं पर साम्यवादी दल के नेतृत्व को स्वीकार किया गया है। संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस चीन के साम्यवादी दल के नेतृत्व में चीन की राजसत्ता का उच्चतम अंग है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस चीन के साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति के सुझाव पर राज्य परिषद के प्रधानमंत्री और अन्य सदस्यों की नियुक्ति तथा प्रच्युति करती है। चीन में भी पूर्व सोवियत संघ की भांति साम्यवादी दल और शासन में भेद करना कठिन है और दोनों के बीच विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती। इन दोनों ही देश में दल की वास्तविक शासन शक्ति है और विभिन्न शासकीय संस्थाएं दल की नीति को कार्यान्वित करने के साधन मात्र हैं। चीनी साम्यवादी दल के पोलित ब्यूरो के एक सदस्य तुंग पीओ ने स्पष्टता घोषित किया था कि क्रांति का नेतृत्व करने, सत्ता प्राप्त करने और लोकतंत्रात्मक अधिनायकवाद को स्थापित करने में साम्यवादी दल राज्य के अंग का निर्देशक दल बन गया है। उनके मतानुसार दल और राज्य के अंगों के बीच संबंध निम्नांकित सिद्धांत पर आधारित है। पहला, राज्य कार्यों के स्वरूप और दिशा के विषय में दल राज्य को विशिष्ट निर्देश देता है। दूसरा, दल अपनी नीतियों को राज्य और उसके अंगों के माध्यम से कार्यरूप देता है तथा उसकी कार्यवाहियों की देखरेख करता है। तीसरा, दल ही राज्य के अंगों में निष्ठापूर्वक और कुशलता से काम करने वाले दल के सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों की छांट और उनकी पदोन्नति करता है। प्रशासकीय नीति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे वे आंतरिक प्रशासन से संबंधित हो चाहे वैदेशिक संबंधों से, पहले दल के उच्चतम अंगों में निश्चित किए जाते हैं और बाद में वे राज्य के अंगों द्वारा घोषित किए जाते व क्रियान्वित किए जाते हैं। सेन यू डाई के शब्दों में, चीनी शासन पर चीन के साम्यवादी दल का पूर्ण नियंत्रण आधुनिक सर्वसत्तावादी राजनीति का सर्वाधिक विषमकारी तत्व है। न केवल सामान्य प्रशासन, वरन न्यायपालिका और सेना पर भी साम्यवादी दल का ही पूर्ण नियंत्रण रहता है। चीन में न्यायपालिका सरकार की एक स्वतंत्र शाखा न होकर सामान्य प्रशासन का एक अंग मात्र है, जिसका सर्वप्रमुख कार्य व्यक्तियों को समाजवाद के ढांचे में ढालना है। सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य न्यायाधीश और प्रोक्यूरेट सभी साम्यवादी दल के सक्रिय सदस्य होते हैं। सेना पर भी साम्यवादी दल का पूर्ण नियंत्रण रहता है। रक्षा परिषद और रक्षा मंत्रालय दल के प्रभुत्व में रहते हैं और सेनापति, उपसेनापति, अन्य उच्च सैनिक अधिकारी दल के सक्रिय सदस्य होते हैं। सैनिक यूनिटों में भी पार्टी की यूनिटें होती है। नवीन संविधान द्वारा तो सेना पर दल के नियंत्रण को औपचारिक मान्यता भी प्रदान की गई है। इस संविधान के अनुसार चीन की मुक्ति सेना, जन सेना पर चीन के साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष को देश के समस्त सशस्त्र बलों पर नेतृत्व की स्थिति प्राप्त है। इस प्रकार अब चीन की राजनीतिक व्यवस्था में साम्यवादी दल तथा उसके अध्यक्ष को औपचारिक और कानूनी रूप से वह स्थिति प्राप्त हो गई है जो स्थिति उसे पूर्व सोवियत संघ अथवा अन्य किसी साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था में भी प्राप्त नहीं थी। सेना का नेतृत्व तो दल के अध्यक्ष को सौंपने की यह बात माओ के इस विचार के अनुरूप है कि हमारा यह सिद्धांत है कि पार्टी सेना को कमांड करती है और सेना को कभी भी पार्टी को कमांड करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। साम्यवादी दल के एक छत्र नियंत्रण के संबंध में वार्ड और मैक्रीडीज का कथन है, चीन की राजनीति में साम्यवादी दल की नीति निर्धारित करने वाला और उसे कार्यरूप में परिणत करने वाला केंद्र है, जो सत्ता के एकाधिकार में किसी भी प्रतियोगी को सहन नहीं करता। शासन और समाज में सभी प्रमुख पदों पर इसके सदस्य आसीन हैं। इसका दर्शन ही एकमात्र सरकारी तौर पर प्रचारित दर्शन है, जो सदस्यों और असदस्यों सभी के लिए समान रूप से मान्य है। यद्यपि दल और शासन एक रूप नहीं है, परंतु व्यवहार में साम्यवादी दल ही शासन पर अपना एकाधिकार पूर्ण प्रभुत्व कायम किए हुए है। इस प्रकार साम्यवादी दल के द्वारा चीन की समस्त शासन व्यवस्था पर एकाधिकार पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है। साम्यवादी दल ही वास्तविक शासक है। यह बात इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि यद्यपि माओ त्से तुंग ने 1959 में शासन के सर्वोच्च पद से त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद वे शासन से संबंधित किसी पद पर आसीन नहीं थे, लेकिन जीवन पर्यंत साम्यवादी चीन के वास्तविक शासक माओ ही थे। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। निष्कर्ष रूप से बार्नेट के इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है कि साम्यवादी दल अंतिम राजनीतिक सत्ता और सभी निर्णयों का स्रोत है। यह सेना, शासन, जनशक्ति, संगठनों और वस्तुतः पेचिंग शासन के असाधारण रूप से व्यापक राजनीतिक यंत्रों के प्रत्येक तत्व को निर्देशित और नियंत्रित करता है। 21वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों तक यही स्थिति है। यह रिकॉर्डिंग पिंकेश कुमार की आवाज में राजनीतिक दल और दलीय व्यवस्था तुलनात्मक अध्ययन पुखराज जैन की पुस्तक से किया गया है।